संतप्त मानस शांत हूँ जिनकी दो सौ चार गाथा चल रही थी उसे समाप्त ही हो गई थी, फिर भी 202 पेज पर समय सार अनुशीलन में उसका निष्कर्ष दिया हुआ है, उसे अपन पढ़ते हैं। तीसरे पैरे में इस टीका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान मति ज्ञानादि भेदों रूप परिणमित होने पर भी उनके द्वारा भेद को प्राप्त नहीं होता, अभेद अखंड सामान्य ही रहता है और उक्त सामान्य ज्ञान रूप निज भगवान आत्मा के आश्रय से निज पद की प्राप्ति होती है। तो कितनी कितनी बातें हैं, निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, राग द्वेष मोह का अभाव होता है, आश्रव बंध रुकते हैं, संबर निजरा होकर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहां स्पष्ट किया गया है कि सामान्य ज्ञान रूप आत्मा के आश्रय से इतना लाभ प्राप्त होता है, यद्यपि यह भगवान मोक्ष स्वरूप ही है, तथापि पर्याय में मुक्ति प्राप्त होने के कारण यहां मोक्ष के साथ साक्षात विशेषण का उपयोग किया गया है। देखो, मति ज्ञानादि के भेदों का सर्वथा निषेध नहीं किया, इन भेदों रूप परिणमित होता है, लेकिन भेदों रूप परिणमित होने से वो अपने सामान्यपने को नहीं खोता। सामान्यपने को नहीं खोता माने जो उसका सामान्य स्वभाव है ज्ञान मात्र, वो कायम रहता है। ये बहुत स्पष्ट है कि भारतवर्ष में हम जितने भी ये सवा अरब लोग रहते हैं वे सब भारतीय हैं, एक सामान्य बात है। अब कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ऐसे बहुत भेद होंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्ध, धर्म के हिसाब से बहुत भेद होंगे, भाषा के हिसाब से बहुत भेद होंगे, प्रांत के हिसाब से बहुत भेद होंगे, कलर रूप के हिसाब से बहुत भेद होंगे। कहते वे सारे कितने ही भेद क्यों ना हों, लेकिन वो हमारे सबके भारतीयपने को भेदित नहीं करता। जब भारत के हित का सवाल आता है तो हम सब बिल्कुल एक मत होकर के और उसकी सुरक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे भारतीयपन की निशानी है। यद्यपि जब प्रांतीयता जोर मारती है, भाषावाद जोर मारता है, अपने अपने धर्म जोर मारते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो जो सामान्यपना है वो गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में वो गायब नहीं होता है, वो थोड़ा हमारी दृष्टि से ओझल होता है। क्या ऐसा ही अनादि काल से ये आत्मा जिस पर्याय में पहुंचा उस पर्याय रूप अपने को मान लेता है। मनुष्य पर्याय में पहुंचा तो मनुष्य रूप, त्रिंज पर्याय में पहुंचा तो त्रिंज रूप, स्त्री पर्याय में पहुंचा तो स्त्री रूप, पुरुष पर्याय में पहुंचा तो पुरुष रूप। लेकिन वो आत्मा है, ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी है, वो इस बात को कभी भूलता नहीं है, भूलना नहीं चाहिए। वो भूल जाए तो भी वो सामान्यपना ज्ञान स्वभाव कभी उसमें से जाएगा नहीं, वो तो उसमें रहने ही वाला है। उसकी जो प्रकट होने की और नहीं प्रकट होने की बात हम करते हैं, वो तो हमारी पर्याय में वो जानने में आया और नहीं जानने में आया, इसकी बात है। पूज्य गुरुदेव जी के सुबह जो प्रवचन चलते हैं करीब 5:15 बजे, उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया था उनने कि इससे क्या होता है, वो जो उसका सामान्य बना कहीं भेदों से भेदा नहीं जाता, इस डर के मारे कि हम भेद करेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, हमें भेदों के विस्तार में जाकर समझने से इंकार नहीं करना चाहिए इस डर से। और इस डर से कभी मैं सामान्य मानूंगा तो ये भेद समाप्त हो जाएंगे, सामान्य का इंकार नहीं करना चाहिए। दोनों स्थितियां बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिकाली ध्रुव प्रकट हुआ, ऐसा शब्द आया होगा गुरुदेव जी जो गाथा चला रहे थे उस गाथा में, तो वो बार बार कहते थे वो कहां प्रकट हुआ, वो तो अप्रगट ही है, वो कब अप्रगट था, उसमें तो कुछ होता ही नहीं नया, वो तो अनादि से जैसा है वैसा ही है, वो तो तेरी ज्ञान पर्याय में नहीं आया था तो तुम अप्रगट कहता था, और तेरी ज्ञान पर्याय में आ गया तो तुम उसे प्रकट कहता है। सूरज का उदाहरण मैंने कल दिया था कि सूरज है आकाश में, अपन है यहां और बीच में है बादल, तो बादल अपन से नजदीक है सूरज से दूर है। लेकिन मैं पूछता हूं कि बादल ने अपन को ढका है कि सूरज को ढका है, अपन तो कोई सूरज की तरफ जा ही नहीं रहे थे, फिर वो बादलों ने हमें रोक लिया, सूरज की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं क्यों, उसने अवरोध किया है तो सूरज के रास्ते में किया है, समझे ना। लेकिन नहीं, हम तो मैंने सूरज की किरणें इधर को आ रही थी ना, अब हमारे पास आ रही थी और हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो सूरज तो जैसे बिल्कुल खुला हुआ है, लाखों करोड़ों मील तक, और अमेरिका में भी सुबह खुली है ना, सर्व हमारे हमारे हिसाब से इतनी सी अपेक्षा है कि वो हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हमने सूरज को ही ढका हुआ मान लिया, ढका हुआ तो वो हमारा ज्ञान है, और जो विवेकी जन है, जैसे कल कहा था तलघर में बैठे बैठे भी आकाश में सूरज उग रहा है, इसका ज्ञान उन्हें 24 घंटा रहता है कि नहीं रहता है, उनके ज्ञान में सूरज प्रकट है कि नहीं प्रकट है, क्या फर्क पड़ता है इन बादलों के बीच में आने से। ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के बीच में आने से वो आत्मा के स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है, और जानने वाली ज्ञान पर्याय को भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसके अंदर से भी ये जान लेती है कि भगवान आत्मा प्रकाशित हो वैसा है। ये कहकर ये कहना चाहते हैं कि वो भैया कोई छिप नहीं गया, असंभव नहीं हो गया, सब कुछ बिल्कुल प्रकट ही प्रकट है, बस तेरे जो गुरुदेव की भाषा में कहूं कि तेरे को जो ऐसा लगता है कि मेरी समझ में नहीं आएगा, सबसे बड़ी बाधा यही है बस, खत्म, और कोई कर्म मरम का उदय उदय बाधा नहीं है। तो तूने ये माने तो बहुत गहरी बातें हैं, तो बहुत गहरी बातें हैं, वो अपनी तो समझ में आएंगी, अपन तो भैया स्थूल बुद्धि है, तो ये नहीं है, ये इसमें बताया गया है। अब इसी के बाद में कितने दो कलश हैं, हाँ दो ही कलश हैं, हाँ पहला कलश पढ़ते हैं, पढ़ो भाई। बड़ी सामान्य और विशेष की बात है। यहां सामान्य और विशेष को एकाकार और अनेकाकार के रूप में कहा है। ये तो आप लोगों को ध्यान होगा कि सामान्य और विशेष होते हैं द्रव्य की अपेक्षा, भेद और अभेद होते हैं क्षेत्र की अपेक्षा, और नित्य और अनित्य होता है काल की अपेक्षा, और एक और अनेक होता है गुण की भाव की अपेक्षा, माने गुण की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा। यहां भगवान आत्मा को समुद्र की उपमा देकर समझाया गया है और उसका नाम जानबूझकर रत्ना कर दिया है। समुद्र के तो हजारों नाम हैं, है ना? समुद्र के तो हजारों नाम हैं, लेकिन उसका नाम यहां रत्ना कर दिया है, रत्नों का घर, है ना? सन 71 में जब वो बांग्लादेश बना था ना, टूट के झगड़ा हुआ था, उसके बाद ठीक एक महीना पहले सागर में एक शिविर था और खेमचंद भाई, मैं, बाबू भाई, युगल जी सब लोग गए थे और वहां सबके प्रवचन होते थे बड़े खुले बाजार में। वहां कटरा बाजार कहलाता है, जहां राजनीतिक सभाएं होती हैं, जहां नेहरू जी आए, कोई भी बड़ा नेता आए तो वहां सभा होती है, इतने बड़े मैदान में खुले, और महीना था यही नवंबर, इनसे भी ज्यादा भयंकर सर्दी थी। उसमें जाकर के रात को शाम को 7 बजे से 11 बजे तक प्रवचन चलते थे, खेमचंद भाई का, युगल जी का, बाबू भाई का, और लास्ट में मेरा नंबर आता था 10 से 11 के बीच। तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय सारे विषय चलाते थे, तो वहां लोकल जो लोकल पंडित थे, जो अपने बहुत ज्यादा वो महिमा होती थी तो लोकल पंडितों को बहुत तकलीफ होती थी, तो वो वातावरण वो सबसे ज्यादा आक्रमण मेरे पे ही होते थे, क्योंकि वे तो सब बड़े बड़े थे, पुण्यशाली लोग भी थे क्या, और वो तो बोले उस तरह से बोलते भी नहीं थे, मतलब वो जिसमें आलोचना हो, जिससे लोगों को बुरा लगे, वो बातें मेरे में ही होती होंगी, ऐसा नहीं क्या, उस वजह से मेरी आलोचना बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा क्रमबद्ध बजा के प्रवचन बंद करवाओ क्या, और नहीं तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम सामने सभा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बहुत वातावरण ऐसा हुआ। तो जब वो सब आगे खेमचंद भाई के पास, इनके बाबू भाई के पास आते थे और उनसे सब ये कहते थे, अब वो कहे क्रमबद्ध बजा के प्रवचन बंद करवाओ। अभी सबने बैठ के विचार किया तो लोकल लोग तो घबराते थे। सेठ जी दो भाई थे, भगवान दास और शोभालाल। भगवान दास जरा नरम नेचर के थे और वो शोभालाल बहुत तेज थे, तो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा जो तुम्हें दिखे सो कर लो, दाक्षिणा तो ये होंगे, है हाँ शोभालाल जी। और वो सब खेमचंद भाई भी बोले, सब बोले इतनी बढ़िया चीज चल रही है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, इसमें गड़बड़ होगी। तो मेरे उस व्याख्यान में सागर शब्द आया था चैतन्य रत्नाकर, तो मैंने कहा ये सागर है, सागर है, सागर में की गहराई में जाओ तो रत्न भी होते हैं, और उसमें मगरमच्छ भी कम नहीं होते हैं। और वे उपद्रव भी बहुत करते हैं, लेकिन रत्नों की उपलब्धि करनी हो तो उन उपद्रवों की परवाह किए बिना पार करके और सागर की गहराई में जाना पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा क्या। तो इतना हल्ला हुआ कि हमें मगरमच्छ का, हमें मगरमच्छ, इसे किसी को मगरमच्छ कहने की बात तो थी नहीं, समझ गए ना। तो मैं इसके आजाद कर रहा हूं, यहां पर चैतन्य रत्नाकर, भगवान आत्मा को रत्नाकर कहा, लेकिन रत्नों का आकर आकर कर होने की वजह से। अब इसने भी उन्हें वीर रस का परिपाक किया, देखो जो अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा क्या है जी, अच्छा अच्छा ही है, वो तो हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत में कहां से आ गया, अच्छा अच्छा है ना, एकदम बढ़िया, दो दफे अच्छा अच्छा है, निर्मल पर्यायों के अर्थ में है, अच्छाच्छासम उच्छलन्ति यदिमा संवेदना व्यक्तयो। जिस चैतन्य रत्नाकर में अच्छी अच्छी माने अत्यंत निर्मल पर्यायें उछलती हैं, है ना, जैसे अपन ने अनुवाद में लिखा ना, स्वभाव की हम वेदनाएं मत होकर स्वयं ही वो उछलती, जिस भाव में अद्भुत निधि वो है आत्मा, वो आत्मा अद्भुत निधि है जिसमें ये संवेदनाएं उछलती हों, ऐसा वो जिसमें निर्मल निर्मल संवेदन व्यक्तियां अर्थात ज्ञान पर्यायें समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने से मानो मदोन्मत्त हुई हैं। एक केवल ज्ञान क्या हो गया, इसने सारे लोकालोक को जान लिया, मैंने सारी दुनिया को पी बैठा, है ना। हमारे गुरुजी थे मक्खनलाल जी थे ना, जो मौलाना विद्यालय में हमें पढ़ाते थे, और उन्हीं के एक सहपाठी थे, इनका नाम था देवकी नंदन। आप जाने देवकी नंदन पंडित जी का नाम सुना ना, कारंजा में रहे फिर इंदौर में रहे बाद में, दोनों एक क्लास में ही पढ़ते थे, और फिर दो अलग अलग ग्रुपों में हो गए थे, एक अक्षर तेरह पंथ में रहे, अभी बीस पंथ में हो गए थे शांत सागर महाराज के आने के बाद में। तो अखबारों में बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, जो उस वक्त अखबार निकलते थे ना, तो वहां से एक मक्खनलाल जी का लेख आया, एक लेख देवकी नंदन जी का आया, और नोक झोंक चलती रहती थी। और जब कहीं आपस में टकरा जाते थे किसी गांव में नंगल में, तो भी वहां पर वो होता था। उस वो जमाना वाद विवाद का जमाना था, आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे, तो उनके सब ऐसी पदवियां दी जाती थी, वाजीब गज केसरी बाली रूबी इभ माने जो इभ माने हाथी, तो बादी रूपी हाथी के लिए जीतने में जो केसरी माने सिंह के समान है, तो हमारे गुरु जी को ये पदवी मिली थी मक्खनलाल जी को, बादीब गज केसरी, मतलब वो बाद बाद के नाम जाके बहुत जीत के आते थे, आर्य समाजियों से होते थे बहुत। वहां देवकी नंदन जी भी कम नहीं थे, वो भी बहुत विद्वान थे, उसी उच्च कोटि के थे। तो जब ज्यादा ही झगड़ा हुआ, मतलब भैंसबाजी हुई, वही तात्विक समझ लो तब चर्चा जैसी होती है, तो उन्होंने कहा देवकी नंदन जी ने, ये मक्खन मक्खन तू मक्खन है और मैं देवकी नंदन हूं, समझ नहीं आया। ऐसे ही चाहता हूं क्या, पता ही नहीं चलेगा क्या। कहां गया पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा गड़बड़ मत कर। अब यहां भी वीर रस का परिपाक कर रहे हैं कि वो ज्ञान की तरंगों ने लोकालोक को पी लिया है ना, तो वो पी लेने से उन्हें बहुत अभिमान हो गया कि हम तो इतना जानते हैं, तो मदोन्मत्त होकर वे उछल रही हैं, एकदम अंदर से ज्ञान की तरंगें उछल रही हैं। कहां से, अंदर में जो शांत चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा पड़ा हुआ है, ज्ञान का समुद्र दरिया, वे जो ऊपर ऊपर जो वे लहरें उछलती हैं ना, वे उस समुद्र की ही हैं और समुद्र के ही बल पे उछलती हैं, ऐसा है ना। तो ये कहते देखो, जिसकी निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्तियां, संवेदन संवेदन तो समझते ना, अनुभव करने वाली, उसको फीलिंग करने वाली, और साधु ज्ञान पर्याय समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को, मैंने सारे पदार्थों को जान लिया है, पी लेने से मानो मदोन्मत्त होती हुई अर्थात वो अपने आप उछलती हैं। ये दरिया उछलता है ना, यानी पर्यायें उछलती हैं, यानी नया नया केवल ज्ञान, नया नया केवल ज्ञान, नया नया केवल ज्ञान पैदा होता है ना, वह यह अद्भुत निधि वाला माने कौन, जिस भगवान आत्मा में, जिस समुद्र में, तो ज्ञान रूपी समुद्र में वे संवेदनाएं रूपी लहरें मदोन्मत्त होकर के उछलती हैं, اتنی اتنی مدونمت ہوتی ہیں کہ ناؤں کو الٹ دیتی ہیں, بہت زیادہ تیز آنے تو کناروں کو کاٹ دیتی ہیں, ہے نا. ایسی گیان روپی ترنگوں سے ابھن بھگوان چیتنیہ رتنا کر آتما ایک ہونے پر بھی انیک ہوتا ہوا گیان پریائے روپی ترنگوں کے دوارا اچھلتا ہے, دولائمان ہوتا ہے. کہنے کا مطلب وہ کہ اس سے وہ ترنگوں میں اچھل رہا ہے, اس سے اس کی ایکتا کھنڈت نہیں ہو گئی, اور وہ تو ایک ہی ہے. اور پریائے مانے اوپر اوپر, اوپر کوئی ایسے اوپر نہیں ہوتی ہے, یعنی پریائے اوپر اوپر ایسی ہوتی ہو ایسا نہیں ہے, وہ تو ہر پردیش میں ہوتی ہے, پھر بھی سنورتی ہے نا, اس لیے اسے اوپر اوپر بولتے ہیں. لیکن اندر میں وہ چیتنیہ ندھی رتنا کر ہے, وہ ایک دم اگاد شانت پڑا ہوا ہے. تو اگر وہ شانت اگاد ایک دم ٹھنڈا وہ جو پڑا ہوا ہے, اس کے آشرے سے دھرم ہوتا ہے. دیکھو سمندر میں بہت گہرا ہوتا ہے سمندر, تو آپ جانتے ہی ہیں, اور اوپر سورج کی گرمی سے پانی تپ جاتا ہے, تو اوپر کا پانی کھولنے جیسی پوزیشن میں ہو جاتا ہے, جیٹ کی دو پہری ہو تو ایک دم گرم. لیکن وہ ایسی پرت ہوتی ہے ایک آدھ فٹ کی جس میں وہ گرم رہتا ہے, اور اندر پھر جتنا پانی پڑا ہے وہ ایک دم ٹھنڈا برف جیسا رہتا ہے, وہ اوپر اوپر گرم ہو جاتا ہے. پھر یہاں وہاں کی دھول مٹی اڑتی ہے, برکھوں کے پتے اڑتے ہیں, تو یہ سب جا کر کے اوپر اوپر کی جو لیئر ہے نا دو چار فٹ کی, اس میں وہ گندگی رہتی ہے. تو گرمی گندگی یہ ساری وکرتیاں جو سمندر کی دکھتی ہیں بے اوپر اوپر دکھتی ہیں, بھگوان آتما کی میں نے پریاوں میں دکھتی ہیں. لیکن وہ سمندر اوپر سے دکھتا وہ ہے, لیکن سمندر وہ ہی نہیں ہے, وہ بھی سمندر ہے, لیکن جو اندر دل پڑا ہے کئی کلومیٹر گہرا, وہ ایک دم سوکھ نرمل اور شانت. ہوائیں چلتی ہیں نا, اس سے وہ لہریں بہت اچھلتی ہیں نا, لیکن اندر میں اس دریا اچھلتا نہیں ہے. شانت شیتل اور نرمل تین باتیں ہو گئی نا, اس کے بدلے میں اوپر اوپر کیا ہے, میلا اشانت مانے اچھل رہا نا اور گرم. چیتنیہ رتناکر کا ادھارن دے کر کے وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو بھگوان آتما ہے وہ تم اندر میں ہے, اور اس سے اوپر اوپر جو تیرے وہ ایکتا ٹوٹی ہوئی لگتی ہے, وہ ایکتا ٹوٹی نہیں ہے, اندر سے وہ سامان ایک ابھید نت پڑا ہوا ہے, وہ اصلی دریا وہ ہے, اور اس کے آشرے سے یہ سب کچھ تیرا دھرم کی پراپتی ہوگی. دیکھو کیسی وچتر استھتی ہے, دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے سب جانتے ہیں, یعنی سارے دیش میں پانی کی کمی, اور کہیں سمندر تو بھرا پڑا ہے پانیوں کی, پانی کی کمی کیسے ہو جائے گی. دبئی میں ہے ایسی کئی جگہ ہے, یہاں سے بوتلیں بھر بھر کے جاتی ہیں پانی, تیل بیچتے ہیں اور پانی خریدتے ہیں, اور جتنا تمہیں تیل مہنگا لگ رہا ہے نا اس بھاؤ انہیں پانی ملتا ہے. تو کتنا کیا بھاؤ ہوگا لیٹر, 70 روپے لیٹر, 70 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے پانی پینے کی, جیسے اپنے کو 14-15 روپے میں مل جاتی ہے نا بسلری کی, کہ وہ پانی سب یہیں سے جاتا ہے, وہاں کا پانی تو پینے لائق ہے ہی نہیں, کیونکہ زمین کو کھودو تو تیل نکلتا ہے, تیل پینے کیا, کہ دریا ہے تو صاحب کھارا ہے, تو کھارا کو دریا کو وہ میٹھا پانی بنانے کے لیے یعنی وہ اسے پروسیجر کرتے ہیں تو وہ بھی بہت مہنگا پڑتا ہے, اس سے ان کو یہاں سے خریدنا سستا لگتا پڑتا ہے, پھر خریدنا ان کو سستا پڑتا ہے, تو وہاں پر وہ ایسا چلتا ہے. تو ایسا کہتے ہیں اب دیکھے وہ کیسا, وہ پروجیکٹ لگائیں تو ایک بوتل پانی کو, سمندر کے پانی کو یعنی اتنا نرمل کرنا ہو تو 70 روپیہ خرچ ہو جائے, اب پورا دریا کیا کریں, اس لیے سمندر کا پانی پینے کے کام نہیں آتا. بمبئی کو پانی کہاں کہاں سے لاتے ہیں, کیسا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں, بغل میں کتنا سمندر بھر رہا ہے. तो ये मीठा पानी जो यहां आता है वो आता कहां से है? मैं क्या बताना चाहता हूं, कहते समझ का गंदा पानी, मीठा पानी, खारा पानी, ये मीठा पानी बढ़िया, लेकिन वो मीठा पानी आया कहां से है? कि वो सूरज की गर्मी से वो पानी भाप बन के उड़ता है, देखो डिस्टिल वाटर है, तो उसमें से वो खारापन समुद्र में ही छोड़ देता है, वो मीठा पानी उठ के जाता है, वो दरिया ही का पानी है। जो वैसा प्रोसीजर तुम करो तो तुम भी उसे पीने लायक बना सकते हो, लेकिन तुम्हें महंगा पड़ता है, सूरज को महंगा नहीं पड़ता है। क्यों? अब सूरज अपने में मस्त है, उसने कुछ नहीं किया, समुद्र समुद्र में है, पृथ्वी पृथ्वी में है, अब एक ऐसा सर्कल वो बन गया है, साइकिल घुमाओ, जब सूरज तपता है तो वो समुद्र का जो मैला कुचैला गंदा ऊपर ऊपर ही तो पड़ेंगी ना किरणें, अंदर तो ठंडा है वो, क्यों? उससे वो पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाके बादल बन जाता है, जो इतना भारी था वो इतना हल्का हो जाता है। और फिर देखो समुद्र से दक्षिण भारत से समझ लीजिए और हिमालय तक उत्तर भारत तक पहुंचता है वो, बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी सवारी के, आकाश मार्ग से रोड मोड़ की भी जरूरत नहीं है, कैसी प्रकृति की व्यवस्था है, महीनों आराम से धीरे धीरे चलता रहता है, और आपके समय पर वहां पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचते थे सूरज की गर्मी से जो उठा था ना, तो कितना गर्म हो गया होगा, तब भाप बनी जब तो उठा, और वहां जाकर बर्फ बन जाता है हिमालय में जाकर, कैसा ठंडा हो जाता है, बोलिए। यानी तो गर्म पानी मीठा, गंदा पानी निर्मल, तीन ही गुण बता रहा ना, अपनी बात चल रही ना, गंदा पानी निर्मल, खारा पानी मीठा और गर्म पानी ठंडा, ये तीनों होकर के वहां पर वो बर्फ में बदल जाता है, और फिर वहां से वो नदियों के माध्यम से बहता है धीरे 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 धीरे, तो जाकर के सारे हिंदुस्तान, सारे देश, सब देशों को, पृथ्वी को हरी भरी करता हुआ सब में फैल करके बहता रहता है, तो उसी समुद्र में चला जाता है। एक ऐसी विचित्र प्रक्रिया है जो प्रकृति की ऑटोमेटिक प्रक्रिया से ये निरंतर सारी चीज चल रही है। अब आप देखिए विश्व में घूम के आइए, सारी दुनिया में उत्तर की तरफ ऊंचाई है और दक्षिण की तरफ नीचाई है, समुद्र दक्षिण की तरफ है हमेशा, चाहे अमेरिका में भी हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, तब बिल्कुल 36 का आंकड़ा है ना, एकदम जब यहां सुबह उठता है तब वहां अस्त होता है बिल्कुल, फिर भी वहां उत्तर में है और पूरा दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में पहाड़ियां हैं, हिमालय जैसी हर जगह, अमेरिका में अलास्का उत्तर में है और दक्षिण में सब समुद्र है। अब वो उत्तर एकदम ठंडा और दक्षिण एकदम गर्म, जहां समुद्रों पानी है वो एकदम गर्म, यदि गर्म नहीं हो तो उठे कैसे पानी, देखिए यहां हिमालय, यहां से जाओ उतरते वहां एकदम ऊपर चले जाओ हिमालय की तरफ ठंडक, वहां अलास्का में चल जाओ तो जम जाओ, ऐसी हालत हो जाए, ऐसी हालत है, और नीचे नीचे आओ तो इधर गर्मी, उसी से तो साइकिल घूमता है ना। और देखो कि उत्तर के लोग गोरे भूरे तगड़े लंबे चौड़े पंजाबी जैसे है ना इधर, और ज्यो ज्यो इधर पर चले जाओ तो काले कर उठे आएंगे, कश्मीरी एकदम गोरे भूरे दे आएंगे, नहीं मद्रास तरफ से जाओ तो मद्रास ही रहना, लोगों को देखो कैसे होते, कद भी छोटा, शरीर भी छोटा और काला, ऐसे सारे विश्व में है ऐसा दुष्चक्र। चेतन रत्नाकर का उन्होंने इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, क्यों? कि वो अंदर से इतना है, ऊपर ऐसा खोलता है, खोलता है तो उसके परिणाम में ये निकलता है। तो अब अपने पढ़ लिए थे ना, मोजन एक दफे कलस्तर पढ़े तो आपको ख्याल में आएगा स्वभाव पीसम भगवान आत्मा उछल रहा है, समुद्र उछल रहा है अपने आप, समुद्र अंदर में शांत पड़ा है, बाहर से उछल रहा है, तप रहा है, उसका भी परिणाम अच्छा ही है। देखो कि ठंडा पानी सारी दुनिया को मिलता है, हिमालय में बर्फ जम जाता है, अब क्यों न जमे और सीधे ही पानी की पानी रहे तो क्यों तो अच्छा रहेगा ना फिर। अरे वो पानी फटाफट बह के समुद्र में पहुंच जाएगा, उसको तो साल भर तक बहना है। क्यों? तुमको तो धीरे धीरे पानी चाहिए, इस पृथ्वी को तो धीरे धीरे चाहिए, पेड़ों को तो धीरे धीरे चाहिए, रोजाना एक गिलास चाहिए तुम्हें पानी, दस गिलास तुम्हें इकट्ठा मिल जाए, दस बाल्टी ऊपर डालो निकल जाए बह जाए, क्या काम का। तो वो वहां बर्फ बन के जमता रहता है और उतना ही पिघलता है जितना इस पृथ्वी को जरूरत है, और वो धीरे धीरे नदियों के माध्यम से, नलों के माध्यम से आता है, वो नदियों के माध्यम से बह बह करके सब जगह पहुंचता रहता है। क्यों? और धीरे धीरे वहां पहुंचता रहता है। बर्फ में क्यों जमता है? कितना बढ़िया स्टोरेज की व्यवस्था है, स्टोरेज की व्यवस्था है ना, यहां ठंडक रहेगी तो हर चीज की उम्र लंबी होती है। आपके तो ये क्या, इससे अमरूद इनकी भी उम्र लंबी होती है, फ्रिज में रख दो ना तो 10 दिन तक चलते हैं, पर वैसी पड़ी ना सब्जियां बाहर तो खराब हो जाती हैं। ये अमेरिका वाले यही तो तर्क दे रहे हैं कि जो हमारी सब्जियां हम उगाते हैं जितनी, वो दो चार दिन में ही खराब हो जाती हैं। अब एक जगह होती नहीं है, जहां पैदा होती हैं वहां से जहां खाने वाले हैं उन तक पहुंचते पहुंचते जब हाथों में से निकलती हैं तो उनके पास उनको रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आधी तो खराब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, आधी काम में आती हैं। अमेरिका वाले आएंगे तो बड़े बड़े स्टोर बनाएंगे, क्या बिल्कुल एयर कंडीशन, एयर कंडीशन ऐसे कि तुम वहां खड़े नहीं रह सकते, इतना ठंडा होता है उनका वो, ये अपने फ्रिज के अंदर जैसा होता है ऐसे उन्होंने एक एक लाख लीटर दूध बन जाए इतने बड़े फ्रिज बना रखे हैं। वो बनाएंगे तो आपकी बर्बाद होती सब्जियों को बचाएंगे, बर्बाद होते हुए अनाजों को बचाएंगे। तो वो कहते हैं जब देश में से बचेगी संपत्ति तो वो आपके बचेगी तो सबको काम आएगी, मेहनत होगी। क्यों? ये तर्क है क्या? अपन क्यों नहीं बना पाते? हर साल आता है इतने गेहूं जल गए, इतने गेहूं सड़ गए, इतना फलाना हो गया, तो हम क्या, हमारे पास स्टोर नहीं है। देखो हम गेहूं पैदा कर लेते हैं तो उन्हें रखने की जगह नहीं है हमारे पास जिसमें वे सुरक्षित रहें, वो चूहों से नहीं बचा सकते हैं हम, अब छोटे छोटे कीड़ों से भी बचा लेंगे, चूहे तो वहां घुस ही नहीं सकते हैं, घुस जाएंगे तो दो घंटे में मर जाएंगे। ये 10 हाथों में जाते हैं, 10 लोग कमाते हैं, उसमें सीधा खेत से खरीदेंगे और अपने सीधा स्टोर में आएगा और तुम जाके सीधे ले आओ। तो वो कह रहे जो हम कमाएंगे वो तो बचत का कमाएंगे, बचाएंगे वो कमाएंगे, तुम्हें तुम्हारे लिए तो हम सवारी कर देंगे। कोई मैं प्रधानमंत्री का एजेंट नहीं हूं मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि भाई लाभ कहां से होगा, कि लाभ यहां से होगा, सब चीज सब जगह पहुंचेगी, सुरक्षित रहेगी। हम इकट्ठा तो नहीं पानी को वापर सकते, तो समुद्र वहां पर जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल के आएगा ना, तो ऐसी हमारी जो खाद्य सामग्री है उसे हम धीरे धीरे खा सकते हैं, एक ही दिन में तो सब नहीं खा सकते। क्यों? नींबू आपको सिर्फ नींबू के सीजन में मिलेगा, तो 8-10 दिन 15 दिन खा लो नींबू, नहीं खा नहीं, नींबू का रस निकाल के बोतलों में बंद करके उस फ्रिज में उसमें रखेंगे, 12 महीने नींबू खाना, हर चीज 12 महीने खाना। کسی کا جوس بنا کے رکھیں گے, کسی کا یہ بنا کے رکھیں گے, کسی کا بنا کے رکھیں گے, یعنی اس کو پرزرو کریں گے, بہت دنوں تک اس کو کھڑا رکھیں گے. بیچارے غریب کسان کیا سمجھیں اس بات کو, یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو کہتے ہیں دکاندار ختم ہو جائیں گے تو بھڑکاتے ہیں جنتا, سب جانتے ہیں جی. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھی جانتے ہیں, ان نے خود ہی بنائی تھی یوجنا پہلے, لاگو نہیں کر پائے, لیکن ابھی جنتا ماتا بن اس کا, اس لیے انہوں نے ووٹ لینا ہے. جو کسی پرکتی کی ویوستھا ہے, یہ بھگوان آتما میں بھی ایسی ویوستھا ہے. وہ چیتن رتنا کر اندر میں شانت شانت پڑا ہے, اور جو اچھلنے والی پریائیں بھی یہ اسی کی ہیں. تو کیا بتایا تھا پیچھے کلش میں, کہ ان پریاؤں نے اس کے سامانیہ کو, اس کے ایکتو کو کھنڈت نہیں کیا. کن نے یہ انیکاکار ہو کر کے بھی جنہوں نے ایکاکار کو کھنڈت نہیں کیا, اور وہ ایکاکار ہو کر کے بھی انیکاکار کو پوشن دیتا ہے. دیکھو پھر بھی انیکاکار ہو کر سوئم میں ہی اچھلتا, وہ کون چیتن رتنا کر بھگوان آتما. یہ جو کیول گیانادی پریائے ہیں وہ بھی اسی کی ہیں, وہ اچھلن بھی اس کی ہے, اور اندر میں ایکتو سامانیہ نتتو اور ابھیدتو کو دھارن کرنے والا بھگوان آتما بھی تو ہی ہے. اسے کہیں دوسرے کی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں ہو گیا نا یہ کلش. اس میں ویسے بہت لکھا ہے میں نے, اس میں بہت لکھا ہے. دیکھو سب پرمان دیے ہیں سب کے الگ 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 سے. ناٹک سمے سال ہے نا بناسی داس جی کا, تو اس کی تی کا ایک بدھو لال ساوک ہوئے ہیں ان نے لکھی ہے. تم نے بدھی لال کر دیا ہے, گھبرانا نہیں, وہ تو بدھو لال ہی تھے. تو بدھو مانے کوئی بدھو نہیں ہوتا ہے, بدھو مانے کیبل گیانی ہوتا ہے. ارہنت بھگوان کو بدھو کہتے ہیں اپنے شاستروں میں لکھا. ارہنت بھگوان کی جو ورنن کیا تو انہوں نے بدھو لکھا. اور جب بودھ دھرم والوں نے اپنے بھگوان کو بدھو لکھا ہوگا تب انہوں نے کیول گیانی کے ارتھ میں لکھا ہے. بدھو مانے پراکرت بھاشا میں, ابھرنش بھاشا میں کیول گیانی ہوتا ہے, پورن گیانی. اب جے بدھو مانے مورکھ کہاں سے ہو گیا؟ ایسا ہو گیا کہ ایک سمے اس دیش میں بودھ لوگ چھا گئے تھے, اور ان کے بیدھ بھکشو جگہ جگہ دنیا میں گھوم گھوم کر بودھ دھرم کا پرچار کرتے تھے, اور روزانہ 100-200 بودھ بناتے تھے. ایسی پرتیجا لے کے چلتے تھے, میں 100 بودھ جب تک نہیں بناؤں گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. ہمارے جین آچاریوں نے بھی ایسا کیا اس سمے کبھی. تو وہ بودھ بناتے تھے نا, بودھ دھرم میں دیکشت لیتے تھے, کرتے تھے. تو وہ کہتے بودھ بنائیں گے, تو بودھ دھرم میں دیکھ کرنے کا نام ہے بدھو بنانا. اب جو دھرم, جیسے مان لو کہ ہندو کو کوئی مسلمان بنا ہے تو ہندو کو کتنا برا لگے گا. تو وہ کہتے ان کے پاس مت جاؤ, وہ تم کو بدھو بنا لیں گے. تو دھیرے دھیرے وہ بدھو کے ایسے مورکھ بنا لیں گے, ٹھگ لیں گے, خیال میں آئی نا. تو بدھو کا ہاتھ ہو گیا. اس طرح سے وہ بودھ دھرم کے پرتی گھنا کی وجہ سے وہ بدھو شبد کا ارتھ بدل کر کے بھی ہے. ننگا لچا بدھو یہ شبد جو ہیں یہ ارہنت بھگوان کے لیے کیے. نہیں نہ دگمبر, ننگا لچا جو کیس لنچ کریں اپنے دگمبر منی, یہ لچا اب آج کا ننگا لچا کا کیا ارتھ ہونے لگ گیا. بدھو یہ سب پراکرت بھاشا میں آج بھی ہیں. تم پڑھو گو پرماتم پرکاش اور یوگ سار, اس میں یہی شبد آئے ہوئے. جو بھاشا کے ویگیانک ہیں نا, انہوں نے سب سدھ کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی میں نے اندر سے پیدا نہیں کیا ہے, میں نے پڑھا ہے سب. کیا ہوتا ہے, شبدوں میں وپریاس ہوتا ہے, شبدوں میں پریورتن ہوتا ہے, شبدوں کے لاگھو ہوتا ہے, گروتا آتی ہے, کوئی شبد کی عزت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے، کسی شبد کی عزت دھیرے دھیرے بڑھ جاتی ہے، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دکشن بھارت میں جتنے بھی یہ آتے ہیں پلئی، تھانو پلئی، فلانے پلئی، آتے کہ نہیں آتے، یہ سب سپتر کے ارتھ میں ہوتا، بہت اچھا ارتھ ہوتا ہے ان کا وہاں۔ لیکن اتر اور دکشن بھارت میں بہت جھگڑا چلا، وہ درور سنسکرتی والے کہلاتے تھے، یہ آریہ سنسکرتی والے، تو آریوں دروں میں جو جھگڑا ہوا تو جس کو وہ اچھا اچھا کہتے تھے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا نا، کتے کے بچے کو ہم پلا کہنے لگے، وہاں سرو شریشٹھ پرش کے لیے بھی تھا۔ دیکھو پاکستان نے جب اپنا نام پاکستان رکھا ہے تو اس نے کوئی گندا نام رکھا ہوگا، پاک مانے پوتر استھان، اور ہم نے ان کے پرتی گھنا کے کان لیٹ ان کو پاکستان کہنے لگے، کہاں جا رہے کہ پاکستان جا رہے، گھنا سے ان کئی کارنوں سے یہ ارتھوں میں پریورتن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یعنی تم کو کسی آچاری کا ارتھ سمجھنا ہے تو اس کال میں اس بھاشا میں اس شبد کا کیا ارتھ تھا وہ تمہیں سیکھنا پڑے گا، انیسا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، سمجھے نا، کیونکہ وہ 2000 برس میں بہت ارتھ میں پریورتن ہو جاتا ہے۔ انگریز لوگ پروپیگنڈا، اس کو دھرم پرچار کو بولتے ہیں پروپیگنڈا، کیونکہ ہمیں عیسائی دھرم کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اپن کیا کہنے لگے کہ بے لوگ آئیں گے یہاں بہت پروپیگنڈا کریں گے، بتنا ہم نے پروپیگنڈا کو بالکل بہت برے ارتھ میں کر لیا، جبکہ وہاں بالکل دھرم پرچار کے ارتھ میں ہوتا تھا۔ دیکھو تو بدھو لال جی کی وجہ سے کہہ رہے تھے، بدھو لال جی نے کیا لکھا، یہ تو بدھی لال اس نے چھاپ دیا ہے، لیکن واسطو میں ان کا نام تو بدھو لال صاحب کا ہی تھا، ہے نا۔ یہاں گیان کو سمندر کی اپما دی ہے، سمندر میں رتنادی انت درب رہتے ہیں، گیان میں انت درب پرتبمبت ہوتے ہیں، سمندر رتنادی روپ نہیں ہو جاتا، جیسے گیان بھی گے روپ نہیں ہوتا، سمندر کا جل نرمل رہتا ہے، گیان بھی نرمل رہتا ہے، سمندر پریپورن رہتا ہے، گیان بھی پریپورن رہتا ہے، سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، گیان میں بھی متسوتادی ترنگے ہیں، سمندر مہان ہوتا ہے، گیان بھی مہان ہوتا ہے، سمندر اپار ہوتا ہے، گیان بھی اپار ہوتا ہے، سمندر کا جل نجادھار ہوتا ہے، گیان بھی نجادھار ہے، سمندر اپنے سروپ کی اپیکشا ایک اور ترنگوں کی اپیکشا انیک ہوتا ہے، گیان بھی گائک سواب کی اپیکشا ایک اور گیہوں کو جاننے کی اپیکشا انیک ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کہاں کہاں سے نکال کے سب پڑھا، ان کا تو پورا ناٹک سمے سال پہ لکھا ہے ارجن نے، تو کتنا لکھا ہوگا، لیکن ایک چھند آپ کے لیے ہم نکال کے لائے کہ انہوں نے ایسی بڑھیا چیز لکھی تھی، ان کو ہم اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے تھے نا، اتنی باتیں سب، لیکن ان کی رجسٹر تو ہے نہیں اور سب کو پتا بھی کہاں ہے، لیکن نہیں، جو چیز جہاں سے لی ہے اپن نے ایمانداری سے وہاں کے اوپر بتانا۔ ان نے کتنی اپما، مطلب اب اس کلش کو جب انہوں نے ارتھ کیا ہوگا تو انہوں نے دونوں سے سمجھ گیان رتنا کر، رتنا کر مانو سمجھ کی اپما سے ان کو بتایا ہے۔ پھر جیتن جی چھابڑا آئے، چھابڑا نے بھی کیا، پھر پانڈے راجمل جی کا دیکھیں آپ اپن تھوڑا، کیونکہ بنارسی راج جی ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ دیکھو پیج نمبر 204 تیسرا پیرا، کوئی آشنکا کرے گا کہ گیان کی پر آشنکا کرے گا کہ گیان تو گیان ماتر ہے، ایسے جو متی گیان آدی پانچ بھید کیوں ہیں؟ سمادھان اس پرکار ہے کہ جو گیان کی پریائے ہے کچھ ورودھ تو ہے نہیں، لیکن وہ کیا کرے، اس میں کیا ورودھ ہے، وگیان کی پریائے ہیں اس نے کہہ دیا، اس کو ان کی بھاشا ایسی ہے اس زمانے کی، یہ بھاشا تو پھول چند جی نے کافی سیدھی کر دی، اصلی بھاشا انہیں دیکھو گے تو تم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کیا کہہ رہے ہیں۔ وستو کا ایسا ہی سہج ہے، پریائے ماتر بچارنے پر متی آدی پانچ بھید ودیمان ہیں، وستو ماتر انبھونے پر وہ گیان ماتر ہے، وکلپ جتنے ہیں اتنے سمست جھوٹے ہیں، کیونکہ وکلپ کوئی وستو نہیں ہے، وستو تو گیان ماتر ہے۔ अभी तुम ज्ञान नए पढ़ोगे तो कल्पना लोक भी वो भी ज्ञान वस्तु है, ज्ञान का गेहा है, पढ़ा है तुम्हें, पढ़ा था संजीव गोदा ने, मैंने सब सुना है, ज्ञान नए का स्वरूप कितना बढ़िया बताया था। तो ये सारा कल्पना लोक है ना, तो यहां सब कल्पना लोक को झूठा कह रहे हैं। देखो कोई ऐसा मानेगा कि जितनी ज्ञान की पर्याय है वे समस्त अशुद्ध रूप हैं, सो ऐसा तो है नहीं, कारण कि जिस प्रकार ज्ञान शुद्ध है उसी प्रकार ज्ञान की पर्याय वस्तु का स्वरूप है, इसलिए शुद्ध रूप है, स्वरूप है, परंतु एक विशेष पर्याय मात्र का अवधारण करने पर विकल्प उत्पन्न होता है, अनुभव निर्विकल्प है, इसलिए वस्तु मात्र अनुभवने पर समस्त पर्याय भी ज्ञान मात्र है, इसलिए ज्ञान मात्र अनुभव करने योग्य है। ये उन्होंने लिखा, इसके आधार पर बनारसी दास ने ये छंद लिखा है, पढ़ो। स्पष्ट वही बात जो कही समुद्र की उपमा दे करके उन्होंने इस बात को समझाई है, इसका अर्थ बताऊं कि चले अब नीचे पीछे पड़ जाना है ना। अब इस तरह से मतलब ज्ञान को रत्नाकर बताया है, पर्याय भी अब उसी की उछलन है और पर्याय उसकी कोई विरोधी नहीं है, उसी में से उत्पन्न होती हैं, लेकिन पर्याय पर दृष्टि रखने से सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए द्रव्य पर दृष्टि रखो तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है, जिसको यहां झूठी कह रहे हैं। अब दूसरा कलश पढ़वाएंगे, हो गया समय, हो गया ना, बस बाकी के